वर्तिका ने दीवा की गलतफहमी को दूर करते हुए उसे बता दिया था कि वो आर्यांश की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी बहन है। रात को वर्तिका दीवा के साथ ही सोई थी और दोनों देर रात तक बातें कर रही थी, इसलिए दोनों को उठने में देर हो गई थी। आर्यांश उन्हें उठाने के लिए आया और दोनों को खींचते हुए उसने जमीन पर गिरा दिया। दीवा को जहां आर्यांश के गुस्से से डर लगता था, वहीं वर्तिका उससे टक्कर लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दीवा को वर्तिका के रवैये से थोड़ी हैरानी हुई। वर्तिका अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, लगता है मुझे मॉम को तुम्हारी शिकायत करनी ही होगी, मैं कॉल करके सब बताती हूँ। आर्यांश अच्छे से जानता था कि उसकी मॉम समीक्षा को हमेशा से एक बेटी की चाहत थी, लेकिन वो आर्यांश के बाद और बच्चा पैदा नहीं कर पाई। ऐसे में मनीष की फैमिली में उसके कजिन ब्रदर की लड़की हुई तो समीक्षा ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। उन्होंने वर्तिका को बहुत ही प्यार से पाला था। आर्यांश उसके पास आकर सर हिलाकर बोला, मुझे मॉम के नाम से धमकाने की कोशिश मत करो। वर्तिका ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए और फिर उठकर वापस बिस्तर पर लेट गई। उसका इरादा साफ था कि वो इतनी जल्दी नहीं उठने वाली है। उसने आर्यांश को देखकर चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट दी और फिर सोने लगी। वहीं कुछ ऐसा ही हाल दीवा का था। उसे नींद आ रही थी। नींद में उसने घड़ी की तरफ देखा। जैसे ही उसने देखा सुबह के 7 बज रहे हैं तो वो जोर से चिल्लाई, क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना होता था। आर्यांश ने उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ये तो एक्ट्रेस है, शूट थोड़ा लेट भी कर सकती है, लेकिन तुम्हारा क्या, जो लोग जॉब करते हैं उन्हें टाइम से उठ जाना चाहिए। दीवा ने कुछ नहीं कहा। वो जैसे तैसे खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे चक्कर आ रहे थे। दीवा को एक पल के लिए महसूस हुआ जैसे वो बूढ़ी हो रही हो। स्कूल टाइम में वो पूरी रात पढ़ने के बाद भी अगले दिन फ्रेश महसूस करती थी और बिना सोए पूरा दिन निकाल लेती थी। आज एक ही रात में उसकी ये हालत हो गई थी। दीवा भारी कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी, तभी वर्तिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने दीवा से कहा, किसने कहा जॉब करने वाले लोग छुट्टी नहीं ले सकते हैं? बाहर अभी भी बारिश हो रही है, तूफान जैसा माहौल है। दीवा, तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो आ जाओ, तुम भी सो जाओ थोड़ी देर। दीवा का भी मन कर रहा था कि वो सो जाए, पर हॉस्पिटल में उसके पेशेंट उसका इंतजार कर रहे थे। वो एक जिम्मेदार इंसान थी। दीवा ने वर्तिका से कहा, नहीं वर्तिका, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, कहीं कोई इमरजेंसी आ गई तो स्टाफ के बिना प्रॉब्लम होती है। दीवा की बात सुनकर वर्तिका को उस पर बहुत प्राउड फील हुआ। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक अपनी जॉब छोड़कर आर्यांश के पैसों पर ऐश कर रही होती, लेकिन दीवा ऐसी नहीं थी, वो एक खुददार लड़की थी। ठीक है, ऐसा करो फिर, आर्यांश तुम्हें छोड़ देगा, वर्तिका ने कहा। दीवा ने एक नज़र आर्यांश की तरफ देखा, जिसने हाँ में सर हिला दिया था। उसे दीवा को ड्रॉप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दीवा जल्दी से बाथरूम में गई और कुछ ही देर में तैयार होकर बाहर निकल चुकी थी। दीवा आर्यांश के साथ गाड़ी में थी। दीवा को गुस्सा आ रहा था कि आर्यांश हमेशा फास्ट ड्राइव करता था, लेकिन आज जानबूझकर वो धीरे गाड़ी चला रहा था और उसे लेट हो रही थी। दीवा ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें तो तेज़ गाड़ी चलाना पसंद है ना, आज क्या हो गया, इतना धीरे क्यों चला रहे हो? आर्यांश पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो उतना ही धीरे ड्राइव कर रहा था कि अचानक उसने दीवा से पूछा, हॉस्पिटल में तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? ठीक ठाक ही मिल जाती है, लेकिन खुद से कंपेयर करोगे तो तुम्हारे आगे मैं एक बहुत ही गरीब इंसान हूँ, दीवा ने जवाब दिया। तो फिर नौकरी छोड़कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती, आर्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे दूसरों के पैसों पर ऐश करने की आदत नहीं है, मैं खुद कमा सकती हूँ, दीवा ने गहरी सांस लेकर कहा। अचानक आर्यांश ने ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक दिया। उसने दीवा की तरफ देखकर कहा, ठीक है फिर उतर जाओ। क्या? दीवा को उसका इरादा समझ नहीं आया। वो उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। तुमने कहा ना कि तुम्हें दूसरों के पैसों पर ऐश करने की आदत नहीं है, तो ये गाड़ी तो बहुत लग्जूरियस है, तुम्हारी हैसियत के बाहर है। ऐसा करो, अपनी उस पुरानी छोटी गाड़ी में आ जाओ या फिर कोई कैब कर लो, आर्यांश ने भौहें उठाकर कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर उसे परेशान करने पर आ गया हो। दीवा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी दीवा ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी। बाहर बारिश हो रही थी, ऐसे में टैक्सी मिलना भी आसान नहीं था। दीवा ने पैदल जाने का सोचा। उसने हाथ बढ़ाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो लॉक था। दीवा ने आर्यांश की तरफ देखकर हल्के गुस्से में कहा, दरवाज़ा खोलो। पागल हो गई हो, इतनी बारिश में चलकर जाओगी, आर्यांश ने सर हिलाकर कहा। वो दीवा से मजाक कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था दीवा उसकी बात को इतना सीरियसली ले लेगी। हाँ चलकर जाऊंगी, अब दरवाज़ा खोलो, दीवा ने चिढ़कर जवाब दिया। चुपचाप बैठी रहो, हमारे बीच में कुछ बातें हैं जिन्हें हमें क्लियर कर लेना चाहिए, आर्यांश ने सख्त आवाज में कहा। मिस्टर कपूर, आप अपनी कंपनी के बॉस हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, मुझे देर हो रही है, आपको जो भी बात करनी है आप बाद में कर लीजिएगा, मुझे देर हो रही है, ऑलरेडी मैं लेट हूँ, दीवा ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। इस बार उसका मासूम चेहरा देखकर आर्यांश को दया आ गई। उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और फिर तेज ड्राइव करने लगा। आर्यांश ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में दीवा ही चल रही थी। वो जानता था कि दीवा बहुत खुददार है। उसने पिछली बार भी मजबूरी में उसकी मदद ली थी, वो भी अपने लिए नहीं, अपने मॉम डैड के लिए। ऐसे में वो कुछ भी ऐसा वैसा कहकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। कल रात दीवा ने आर्यांश को कमरे से निकाल दिया था। आर्यांश उस बात पर अभी भी गुस्सा था, लेकिन दीवा के बिहेवियर को देखकर उसे कुछ महसूस हुआ। दीवा की आंखों में जलन थी। ऐसा लगा जैसे दीवा उसे प्यार करने लगी हो, और ये उसके लिए अच्छा नहीं था। आर्यांश इसी बारे में दीवा से बात करना चाहता था, पर उसे मौका नहीं मिला। दीवा को छोड़ने के बाद आर्यांश ऑफिस पहुंचा। उसने अपने लिए कॉफी मंगाई। कल रात वो ठीक से सोया नहीं था, इस वजह से थोड़ा थका हुआ लग रहा था। सार्थक उसके लिए कॉफी लेकर आया तो उसने आर्यांश का चेहरा देखकर शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है सर कल रात आपको सोने का मौका नहीं मिला। बातों ही बातों में वो आर्यांश को परेशान कर रहा था। उसका इशारा किस तरफ था आर्यांश समझ गया था। आर्यांश ने उसकी तरफ घूर कर देखा। वो पहले से ही चिढ़ा हुआ था। उसने सार्कास्टिकली पूछा, हाँ कल रात में सोया नहीं था। और क्यों नहीं सोया था? चलो तुम बताओ क्यों नहीं सोया था? क्या सच में? लगता है मिस गोयनका ने आपको पूरी रात नहीं सोने दिया होगा। दिखने में तो काफी डेलिकेट सी लगती हैं, सार्थक ने भौहें उठाकर कहा। वेरी फनी, अब मैं बताता हूँ कि मैं कल रात क्यों नहीं सोया था। मिस गोयनका ने मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया था। मैं पूरी रात स्टडी रूम में था, इसीलिए मुझे गुस्से में नींद नहीं आई, आर्यांश ने लगभग चीखते हुए कहा। अच्छा, ऐसा हुआ था? तब तो बहुत बुरा हुआ, आपको आप ही के कमरे से बाहर निकाल दिया गया। वैसे मिस गोयनका ने ऐसा क्यों किया? सार्थक ने काफी इंटरेस्ट के साथ पूछा। आर्यांश ने गहरी सांस ली और बच्चों की तरह मुंह बनाया। उसने सार्थक को सब बताते हुए कहा, कल रात वर्तिका मेरे घर पर आई थी। दीवा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि वर्तिका मेरी गर्लफ्रेंड है, और वर्तिका ने जानबूझकर उसे क्लियर नहीं किया। उस वजह से मिस गोयनका को लगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और गुस्से में उसने मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया। तब तो बहुत बुरा हुआ, जरूर आप ही ने इसकी शुरुआत की होगी, और आपकी चालाकी आप पर ही भारी पड़ गई, सार्थक ने हंसते हुए कहा।
सार्थक की बातों में सच्चाई थी। जब दीवा आर्यांश और वर्तिका को देखते हुए नीचे आई थी, तब आर्यांश ने जानबूझकर वर्तिका के कंधे से अपना हाथ नहीं हटाया था। उसे दीवा की आंखों में जलन देखनी थी, पर उसे नहीं पता था कि उसे ही आखिर में भुगतना पड़ेगा। आर्यांश ने सार्थक को घूरते हुए देखा और कहा, अब आगे एक शब्द और कहा तो डिमोशन कर दूंगा। सार्थक चुप हो गया था। आर्यांश ने गहरी सांस ली और फिर कुछ पल रुकने के बाद कहा, मैंने तुम्हें यहां मेरी हेल्प करने के लिए बुलाया है। मुझे लगने लगा है कि दीवा मुझसे प्यार करने लगी है, तुम मेरी हेल्प करो ये पता लगाने में। लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने पिछले 7 सालों से किसी से प्यार नहीं किया है, सार्थक ने सिर हिलाकर कहा। आर्यांश ने सार्थक की तरफ देखा। आर्यांश के साथ काम करने से पहले सार्थक आर्मी में था। उसकी गर्लफ्रेंड भी आर्मी में ही थी, जहां एक मिशन के लिए उसे बचाते हुए उसकी गर्लफ्रेंड की जान चली गई थी। तब से ही सार्थक ने सोच लिया था कि वो किसी और से शादी नहीं करेगा और ना ही प्यार करेगा। आर्यांश ने उसे देखकर सिर हिलाया और कहा, लेकिन मेरी बातों से कुछ तो निष्कर्ष निकाल ही सकते हो। मैं इतनी औरतों से मिला हूँ, सब मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन दीवा की बात अलग है। वो किसी पुरानी शराब की तरह है जो होठों से लगने के बाद मदहोश कर देती है। आर्यांश अपने पहले प्यार को चाय की तरह बताता था, जिसे जितना ना पीना चाहो वो उतना ही अपने करीब खींचती थी, जो सुकून देती थी। अच्छी बात है कि मिस गोयनका बाकी लड़कियों से अलग है, वो आपसे प्यार कर सकती है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आपको उनसे प्यार नहीं करना चाहिए। एक वक्त के बाद प्यार बस तकलीफ देता है और कुछ नहीं, सार्थक ने कड़वाहट से कहा। उसकी बात सुनकर आर्यांश की आंखें छोटी हो गई थीं। सार्थक की बातों ने उसे ये याद दिला दिया था कि उसे दीवा से प्यार करने की इजाज़त नहीं है। आर्यांश बहुत कोशिश करता था कि वो दीवा से किसी तरह का अटैचमेंट ना रखे, लेकिन उसके दिल ने उसका साथ नहीं दिया। उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब वो कल रात दीवा के बिना सो तक नहीं पाया था। आर्यांश ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया। उसके चेहरे पर हजारों दर्द उभर आए थे। आर्यांश ने सार्थक की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, और अगर प्यार हो गया तो? सार्थक ने उसकी तरफ देखा। वो समझ गया था कि आर्यांश को समझाना बेकार था। वो पिछले 5 सालों से दीवा को ढूंढ रहा था। अब जब उसे दीवा मिल गई थी तो वो आसानी से उसे जाने नहीं दे सकता था। उसके लिए वो हर मुसीबत को पार करने के लिए तैयार था। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते हुए सार्थक ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो फिर आप दोनों का ही नुकसान होगा। मिस गोयनका को आपकी सच्चाई पता चली तो वो आपसे नफरत करने लगेगी। आर्यांश की निगाहें सर्द होने लगी थीं। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर नफरत है तो नफरत ही सही। कौन सा मैं उससे नफरत नहीं करता था? चाहे हम एक दूसरे को कितनी भी तकलीफ क्यों ना दे, लेकिन मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। प्यार से नहीं तो नफरत से साथ रह लेंगे। आर्यांश की बात सुनकर सार्थक बुरी तरह चौंक गया था। आर्यांश ने तो क्या, किसी ने नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वो नफरत के चलते ढूंढ रहा है उसे एक दिन उससे प्यार हो जाएगा।